ये आकाशवाणी दिल्ली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में मेडागास्कर की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जस्टिन टोकरेली के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने जन सुझाव के आधार पर आगामी बजट पेश करने की विभागीय समीक्षा बैठक की। उत्तर रेलवे ने होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से 20 विशेष रेलगाड़ियां चलाई और दिल्ली के सभी बाजार होली के त्योहार से पहले रंग में रंगे। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत हमेशा पड़ोसी देशों की मदद करने में सबसे आगे रहता है। श्री बिरला ने आज नई दिल्ली में मेडागास्कर की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जस्टिन टोकेली के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधि मंडल के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान ये बात कही। लोकसभा अध्यक्ष ने दोनों देशों के बीच मित्रता को मजबूत करने में मेडागास्कर में भारतीय प्रवासियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का भी जिक्र किया। उन्होंने मेडागास्कर में आयोजित पहले जयपुर फुट कैंप पर प्रसन्नता व्यक्त की, जहां सैकड़ों दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग प्रदान किए गए। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के स्वप्रचार होर्डिंग के मामले की सुनवाई के बाद उन पर FIR दर्ज करने के आदेश का स्वागत किया है। पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रचार के लिए भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं।
ये जो उन्होंने दुर्प्रचार किया, जो पैसे का उन्होंने, जो हम बार बार कहते थे कि केजरीवाल जी करप्शन में इन्वॉल्व हैं, ये एक्सपोज है। अब कोर्ट ने भी माना है और जिस तरह से उनके ऊपर धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया है, ये स्पष्ट करता है कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अत्यधिक गर्मी की घटनाएं और संबंधित राज्य गर्मी कार्य योजना 2025 तथा भूकंप की तैयारी जैसे कई प्रमुख मुद्दों का जायजा लिया गया और उनका आकलन किया गया। ग्रीष्मकालीन कार्य योजना 2025 और बाढ़ प्रबंधन के मुद्दे पर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से एक महीने के भीतर व्यापक कार्य योजना प्रस्तुत करने और उन्हें पहले से ही कार्यान्वयन के लिए तैयार रखने को कहा। बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, विभागाध्यक्ष और सदस्य NDRF, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और दिल्ली विकास प्राधिकरण समेत कई शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी से उनके आवास पर मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि श्री आडवाणी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा, त्याग और समर्पण की अनुपम मिसाल है, जो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने पूर्व उप प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना की। दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों द्वारा निजी ठेकेदारों के साथ की गई कथित अनियमितताओं और फर्जी भुगतानों के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है। शाखा ने एक विज्ञप्ति में बताया कि विभाग की सतर्कता शाखा से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें सरकारी अधिकारियों द्वारा निजी ठेकेदारों को किए गए फर्जी भुगतानों की जानकारी थी। इसके बाद विभाग के प्रमुख सचिव ने एक समिति गठित की, जिसने प्रत्येक मामले की जांच की। इसके बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पाया गया कि 4 कार्यों में बिना कार्य निष्पादन के 100% भुगतान किया गया, वहीं एक कार्य में लाल डोरा की सीमाओं से परे अनधिकृत रूप से निष्पादन किया गया। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने लोकसभा में तुगलकाबाद गांव के लोगों को आए नोटिसों का मामला लोकसभा में उठाया। उन्होंने नोटिस तुरंत वापस लिए जाने और गांव की जमीन गांव के लोगों को वापस दिए जाने की मांग की। शून्यकाल में श्री बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली को तुगलकाबाद गांव को लगभग 700 साल पहले गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। देश के पहले स्वाधीनता संग्राम में तुगलकाबाद और महरोली के समीप तंवर गोत्र के 12 गांव के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने उनकी जमीन दंड स्वरूप जब्त कर ली थी। भाजपा सांसद ने कहा कि लोगों को ये जमीन वापस दी जानी चाहिए क्योंकि ये न केवल इन गांव वालों का हक है बल्कि ये 1857 के शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के महापौर, अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों के चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। भाजपा ने गुरुग्राम और रोहतक सहित 10 महापौर पदों में से 9 पर जीत हासिल की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोगों ने सरकार के कार्यों और नीतियों पर अपनी मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि विकसित हरियाणा के सपने को साकार करने के लिए ट्रिपल इंजन सरकार तेजी से काम करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज नई योजनाओं और आगामी बजट विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अंत्योदय की भावना को केंद्र में रखकर जनता से मिल रहे सुझावों के आधार पर आगामी बजट का प्रस्ताव तैयार करें। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार का आगामी बजट गरीब और वंचित वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण और युवाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ाने वाला बजट होगा। उन्होंने कहा कि बजट को तैयार करने के लिए जनता से सीधे संवाद और ऑनलाइन माध्यमों से संवाद किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज नेता प्रतिपक्ष आतिशी को पत्र लिखकर कहा कि निलंबित विधायकों को विधानसभा से बाहर रखने का निर्णय नियम 277 और परिसर की परिभाषा के अनुसार था। उन्होंने कहा कि फ्लोर टाइम का आवंटन दलों की संख्या के अनुपात में किया जाता है लेकिन ये समय उन सदस्यों की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है जो सदन में मौजूद होते हैं। श्री गुप्ता ने कहा कि किसी भी सदस्य द्वारा की गई असंसदीय गतिविधि से सख्ती से निपटा जाएगा। इससे पहले आतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आप विधायकों के निलंबन को लेकर नाराजगी दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस ने आज फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों को ठगने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये गिरोह नौकरी का झांसा देकर लोगों के साथ ठगी करता था। इस मामले में 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पत्रकारों के साथ बातचीत में पुलिस उपायुक्त अमित वर्मा ने बताया कि इस फर्जी कॉल सेंटर के बारे में दिल्ली पुलिस को 30 जनवरी को ऑनलाइन शिकायत मिली थी। उन्होंने कहा कि गिरोह के पास से 8 मोबाइल और कंप्यूटर समेत अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद की गई है।
इस केस में पुलिस के पास 30 जनवरी 2025 को एक कंप्लेंट आती है एनसीआरपी पे। हमारी साइबर की टीम है आउटर जिला पुलिस की, उसने एक सराहनीय कार्य करते हुए इस फेक कॉल सेंटर में इन्वॉल्व 18 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे 8 मोबाइल फोन विद सिम वहां रिकवर हुए हैं।
उत्तर रेलवे ने होली के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से 20 विशेष रेलगाड़ियां चलाई। इस पहल का उद्देश्य त्यौहार मनाने के लिए घर जाने वाले यात्रियों को आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा सेवा उपलब्ध कराना है। एक रिपोर्ट।
उत्तर रेलवे ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि यह विशेष गाड़ियां पूरे दिन परिचालित की जा रही हैं। रेलवे ने कहा है कि होली स्पेशल रेलगाड़ियों की जानकारी अखबारों में प्रचार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार बुलेटिन, एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों जैसे बिहार, झारखंड और पूर्वी के लोगों में निवास करने वाले लोगों के साथ साझा की जा रही है। रेलवे ने बताया कि स्टेशनों पर होल्डिंग क्षेत्र स्थापित किए गए हैं जो यात्रियों को अपनी रेलगाड़ियों की प्रतीक्षा करने के लिए आरामदायक स्थान प्रदान करते हैं। वहीं यात्रियों के आवागमन को सुव्यवस्थित करने और भीड़ भाड़ को कम करने के लिए प्लेटफॉर्म के निकास और प्रवेश द्वारों पर क्रॉस मूवमेंट प्रतिबंधित है। उत्तर रेलवे ने कहा कि आज भी 25 से ज्यादा होली स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई गयी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि पूरे भारत में भारतीय रेल ने 1200 होली स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने की योजना बनाई है। इसमें से उत्तर रेलवे की 400 ट्रेनें चलाई आने की योजना है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
रक्षा मंत्रालय ने 2906 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांसपोर्टेबल रडार अश्विनी की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस रडार को भारत की हवाई निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने डिजाइन और विकसित किया है। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए जो रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने कहा है कि देश के 776 जिलों में से 773 में 5G सेवाएं उपलब्ध हैं। लोकसभा में आज ये जानकारी देते हुए संचार राज्य मंत्री पेम्मा सनी चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार ने देश में 5G सेवाओं को लेकर कई नई पहल की हैं। उन्होंने कहा कि दूर संचार सेवा प्रदाताओं ने अब तक 4,69,000 5G बेस ट्रांसीवर स्टेशन स्थापित किए हैं। दिल्ली पुलिस की अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। दक्षिण पूर्वी और दक्षिण दिल्ली में अभियान के दौरान पुलिस ने अवैध रूप से देश में घुसे 12 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभियान के दौरान कई दस्तावेज भी बरामद किए गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के सभी बाजार होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। इस बार केमिकल से बने रंगों की बजाय दिल्लीवासी प्राकृतिक रंगों को काफी पसंद कर रहे हैं। अरारोट, बेसन, सूखी पालक, चुकंदर के पानी से बनाए गए गुलाल और गीले रंग भी इस बार बाजार में छाए हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाजारों में भीड़ प्रबंधन के लिए सभी चौक और तिराहे पर यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।
राजधानी के सदर बाजार, चांदनी चौक, कमला नगर मार्केट समेत अन्य स्थानीय बाजारों में खरीदारी करने वालों की भीड़ देखी जा रही है। लोग गुलाल से भरे पटाखे, सिलेंडर और बैटरी वाली पिचकारी खरीद रहे हैं। इस भीड़ को देखते हुए सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को निर्देश जारी किए। यातायात पुलिस ने कहा है कि होली वाले दिन यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है जो उस दिन सड़कों पर तैनात की जाएगी। पुलिस ने दिल्लीवासियों से नियमों का पालन करने की अपील की। वहीं होली के दिन दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित सभी लाइनों पर दोपहर 2:30 बजे तक मेट्रो सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार होली के दिन सभी लाइनों पर टर्मिनल स्टेशनों से मेट्रो ट्रेन सेवाएं दोपहर 2:30 बजे से शुरू होंगी और उसके बाद सामान्य रूप से जारी रहेंगी। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव,
आकाशवाणी दिल्ली के रंग भवन सभागार में आज होली के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम फागुन आयोरे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कलाकार पीयूषा और कैलाश अनुज की जोड़ी ने प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में बरसाने की होली की प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें श्री कृष्ण और राधा के रूप में कलाकारों ने प्रस्तुति दी। दिल्ली के रविंद्र भवन में चल रहे साहित्योत्सव का आज अंतिम दिन है। साहित्योत्सव में 50 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 700 से अधिक लेखकों ने भाग लिया। महोत्सव का विषय भारतीय साहित्यिक परंपराएं है। इसमें युवा, पूर्वोत्तर, आदिवासी और LGBTQ लेखक, कवि, प्रकाशक तथा विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लोग शामिल हुए। इस बार महोत्सव में 22 भाषाओं के रचनाकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के लिए ट्रायल्स 15 मार्च को दिल्ली में होंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ ने राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में बहाल होने के बाद आज ये घोषणा की। ये ट्रायल के नए प्रशासन की देखरेख में होगा। कुश्ती महासंघ को नए पदाधिकारियों को चुनने के लिए 21 दिसंबर 2023 को चुनाव होने के 3 दिन बाद निलंबित कर दिया गया था। दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस रहा। कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में मेडागास्कर की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जस्टिन टोकेली के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने जन सुझाव के आधार पर आगामी बजट पेश करने की विभागीय समीक्षा बैठक की। उत्तर रेलवे ने होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से 20 विशेष रेलगाड़ियां चलाई और दिल्ली के सभी बाजार होली के त्योहार से पहले रंग में रंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।